بی بی سی انڈیا بول، تاریخ 29 ستمبر، دن شنیوار۔ سبھی سننے والوں کو سندیپ سونی کا نمسکار۔ کیا رفال سودا نریندر مودی سرکار کا وہ فورس بنتا جا رہا ہے یا راشٹریہ سرکشا کے مدے پر راجنیتی کر رہا ہے وپکش؟ یہی ہے آج بی بی سی انڈیا بول کا وشے۔ کیا سوچتے ہیں آپ؟ آپ بھی رکھیں اپنے من کی بات۔ کارکرم میں شامل ہونے کے لیے مفت فون کریں 1811-7000 اور 1811-7001 پر۔ چرچا میں شامل ہوں گے رکشا معاملوں کے جانکار ورشٹھ پترکار راہل بیدی، لیکن تھوڑا ٹھہریں گے اور سنیں گے پہلے وشو سماچار۔
بی بی سی سماچار کلدیپ مشر سے۔ राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल की गोली से एप्पल कंपनी में मैनेजर विवेक तिवारी की मौत हो गई। बताया जाता है कि शुक्रवार देर रात गश्त कर रहे एक पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें रुकने का इशारा किया और न रुकने पर उन्हें गोली मार दी, जिससे रात में ही उनकी मौत हो गई। विवेक तिवारी पर गोली चलाने वाले पुलिस कांस्टेबल प्रशांत चौधरी और उनके एक सहकर्मी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार पुलिस कांस्टेबल का कहना है कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। राजस्थान के अलवर जिले में कथित गोरक्षकों के हाथों मारे गए पहलू खान के परिजनों ने गवाहों की सुरक्षा की मांग की है। उनका आरोप है कि वे जब गवाहों के साथ अदालत जा रहे थे तो उनकी गाड़ी पर गोली चलाई गई। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से नारायण बारेठ।
राजस्थान में कथित गोरक्षकों के हाथों मारे गए पहलू खान के मुकदमे में गवाही देने जा रहे लोगों पर फायरिंग की घटना में जांच का आदेश दिया गया है। इस मामले में शनिवार को बहरोड़ की अदालत में गवाहों के बयान दर्ज होने थे। पहलू खान के परिजनों का आरोप है कि जब वे गवाहों के साथ एक वाहन में जा रहे थे उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। परिजनों के मुताबिक ये गवाही देने से रोकने के प्रयास का हिस्सा है। पहलू खान के परिजन गवाहों के साथ पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह से मिले और सुरक्षा की मांग की। वे मुकदमे की सुनवाई बहरोड़ से अलवर स्थानांतरित करने की भी मांग कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बीबीसी को बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस गवाहों को सुरक्षा देगी।
इंडोनेशिया की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया है कि देश के सुलावेसी द्वीप पर शुक्रवार को आए भूकंप और सुनामी में मरने वालों की संख्या 384 हो गई है। सुलावेसी द्वीप पर भूकंप के बाद फिर से कुछ तेज झटके महसूस किए गए हैं। 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद उठी सुनामी की 3 मीटर ऊंची लहरों ने पालू शहर में भारी तबाही मचाई है। शहर से सामने आई तस्वीरों में सड़कों पर शव और ध्वस्त इमारतें नजर आ रही हैं। पालू का अस्पताल भी ध्वस्त हो गया है, इसलिए घायलों को अस्थायी टेंट में इलाज किया जा रहा है। दर्जनों लोग लापता हैं जिन्हें मलबे में तलाशा जा रहा है। स्थानीय हवाई अड्डा भी आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन इंडोनेशियाई प्रशासन वहां सैन्य विमानों के जरिए रसद पहुंचाने में कामयाब रहा है। इंडोनेशियाई रेड क्रॉस की ओलिया अरियानी ने बीबीसी को बताया, मुझे अब भी पालू में अपने सहकर्मी से संपर्क करने में मुश्किलें पेश आ रही हैं क्योंकि संचार लाइन टूटी हुई है। मुख्य हवाई अड्डा अभी बंद है क्योंकि उसका टावर और रनवे क्षतिग्रस्त हो गया है। आज सुबह ही मुझे पालू से एक सहकर्मी ने बताया कि उन्होंने कई शव देखे और कई शव सड़कों पर पड़े हुए हैं। हम शवों को निकालने में मदद कर रहे हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। जो लोग वहाँ रहते हैं वे अपने घरों में जाने से डर रहे हैं। ये थे इंडोनेशिया में रेडक्रॉस से जुड़ी ओलिया अरियानी के शब्द। चीन ने अपने यहाँ एचआईवी और एड्स से पीड़ित लोगों की संख्या में 14% इजाफे का ऐलान किया है। इसी के साथ चीन में एचआईवी और एड्स से पीड़ित मरीजों की संख्या 8,20,000 से ज़्यादा हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक साल की दूसरी चौमाही में ही 40,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। नए संक्रमणों में ज़्यादातर यौन संबंधों से फैले हैं, जबकि इससे पहले चीन के कई इलाकों में संक्रमित खून की वजह से बीमारी ज़्यादा फैली थी। मालदीव के चुनाव आयोग ने पुष्टि कर दी है कि बीते रविवार को संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनावों में विपक्षी उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की जीत हुई है। आधिकारिक नतीजों के मुताबिक इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने अब्दुल्ला यामीन को 38,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। इससे पहले विपक्ष ने चिंता जताई थी कि राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन नतीजों के ऐलान में जानबूझकर देरी करवाकर किसी भी तरह से सत्ता को अपने पास रखने की कोशिश कर सकते हैं। अब्दुल्ला यामीन का कार्यकाल 17 नवंबर को खत्म हो रहा है और कहा जा रहा है कि इसके बाद वो सत्ता मोहम्मद सोलिह को सौंप सकते हैं। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, नोट कीजिए, हमारे टोल फ्री नंबर 1811 7000 और 1811 7001। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार राहुल बेदी, जो किसी वजह से स्टूडियो में तो नहीं आ सके लेकिन टेलीफोन के जरिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ रहेंगे। राहुल बेदी, स्वागत है आपका।
थैंक यू।
और स्वागत दुनिया भर में हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का। इंडिया बोल में आज चर्चा का विषय निकल कर आया है रफाल सौदे से। सबसे पहले सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को।
126 हवाई जहाज खरीदने थे, यूपीए सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया 526 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। नरेंद्र मोदी जी देश के चौकीदार फ्रांस जाते हैं, जादू से कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया जाता है, एचएल से छीन के अनिल अंबानी को दे दिया जाता है।
राहुल बेदी, सुना आपने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कह रहे थे। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि रफाल विमान का कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी की कंपनी को दे दिया गया तो इस पर इतना हंगामा क्यों बरपा है?
देखिए, अनिल अंबानी की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, ये लगभग 60,000 करोड़ का टेंडर था, ये 36 हवाई जहाज जो थे और उसका 50% मतलब लगभग 30,000 करोड़ ऑफसेट्स में होता है। ऑफसेट का मतलब होता है कि जो कंपनी होती है असला बेच रही होती है उसको डिफेंस, सिविल एविएशन और इंटरनल सिक्योरिटी की सेक्टर्स में वो जो पैसा है वो 50% इस केस में कोई 29-30 हज़ार वो इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो अंबानी साहब को उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा मिला है, मगर कोई लगभग 15-20 और कंपनियां हैं जिनको छोटा छोटा भी मिला है जो लगभग 29-30 हज़ार करोड़ टोटल करता है।
तो इस पर विवाद क्या है, क्या दिक्कत है इसमें?
नहीं, दिक्कत ये है कि ये जो अंबानी साहब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर मोदी के काफ़ी करीब हैं और ये जो हॉलैंड प्रेसिडेंट थे फ्रांस के, उनका जो बयान आया कुछ 4-5 दिन हफ्ता पहले कि हिंदुस्तान की सरकार ने उनको मजबूर किया, फ्रांस की सरकार को, कि आप ये जो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट है आप अंबानी की कंपनी को दीजिए। और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अंबानी की जो कंपनी है DRAL जिसको कहते हैं, दासॉ रिलायंस एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है एरोनॉटिक्स में, डिफेंस में, और जो भी कंपनियां अंबानी साहब की हैं वो बिल्कुल ही रद्द हो गई हैं क्योंकि एक तो उनका कर्जा बहुत है और उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो ये उनका कहना है कि ये मोदी साहब के कहने पे ही दिया गया है और ये मोदी साहब जो अंबानी साहब के करीब हैं उस वजह से दिया गया है।
राहुल बेदी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहें, श्रोताओं से बात करेंगे। उससे पहले बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को सुनते हैं।
राहुल गांधी से हम कुछ और उम्मीद कर भी नहीं सकते। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पूरे परिवार ने बोफोर्स में घूस लेकर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की थी। राहुल गांधी जी, आप गुमराह करने की बात करते हैं।
राहुल बेदी, सुना आपने रविशंकर प्रसाद बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं देश को। रक्षा मामलों के जानकार होने के नाते आपकी क्या राय है, कांग्रेस के जो दावे हैं, जो आरोप है, उनमें कितना वजन है?
देखिए, पहला कांग्रेस का आरोप, बाकी जो पहले आरोप है कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को नहीं दिया, ये 580 करोड़ का कांग्रेस ले रही थी और मोदी साहब की सरकार ने 1500 करोड़ का हवाई जहाज लिया, इसका कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी उसने ये डील फाइनलाइज नहीं की। तो ये बहुत मुश्किल है कहना कि फाइनल प्राइस कांग्रेस पार्टी क्या देती, 500-600 करोड़ देती या वो भी 1500 करोड़ देती, इसका कहना बहुत बहुत मुश्किल है। मगर पहला जो सबूत आया है इनके सामने वो उलान साहब का बयान है कि अंबानी को ये ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान के कहने पे और मोदी साहब के कहने पे ये दिया गया है। तो ये पहला बयान है जो एक इशारा करता है कि मोदी साहब ने अंबानी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया और अंबानी साहब की कंपनी को ये फायदा हुआ।
राहुल बेदी रक्षा मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार चर्चा में शामिल रहेंगे। पहले अब हम श्रोताओं से बात कर लेते हैं। सबसे पहले श्रोता आज हमारे कौन है? हेलो
जी श्रीमान
जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
जी मैं सर्वानंद कुमार राय देवघर डकाय गांव से, झारखंड राज्य से बोल रहा हूं सर।
झारखंड से सर्वानंद जी स्वागत है आपका। चर्चा का विषय आप जानते हैं, क्या सोचते हैं आप? आपको क्या लगता है कि रफाल सौदे पर राजनीति हो रही है या ये सौदा बीजेपी सरकार के लिए बोफोर्स बनता जा रहा है?
जी सर ये तो नहीं कहा जा सकता है कि बोफोर्स जैसा ही ये घोटाला है, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए इसे तो मैं ये क्लियर नहीं कर सकता हूँ कि बोफोर्स जैसा ये घोटाला हो सकता है। लेकिन जिस तरह से देश के मूवमेंट चल रहा है, जिस तरह से बहस चल रहा है, और जिस तरह से कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इस पे आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो हुआ है जिसके कारण ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो इसपे मेरा राय है कि मोदी सरकार की जो ये मोदी जी का जो ये सरकार चल रहे हैं बीजेपी सरकार का, तो इसमें इनको इस चीज का जांच कर क्लियर करा देना चाहिए, ताकि जनता के सामने भी इस चीज का राजनीतिक मुद्दा ना बन पाए।
जी सर्वानंद जी, झारखंड से हमारे श्रोता पहले कार्यक्रम में शामिल हुए, अगले श्रोता के पास चलते हैं। हेलो
हेलो
जी, कौन बोल रहे हैं?
द्विवेदी बोल रहे हैं, इलाहाबाद से। सर
द्विवेदी जी इलाहाबाद से, रखें अपनी बात।
जी मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है गड़बड़ी, तो उसे लगातार पक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन बार बार फिर से वही उस तरह के सवाल विपक्ष की तरफ से उठाना कहाँ तक जायज है? मैं रक्षा विशेषज्ञ जी से ये सवाल करना चाहता हूँ, अगर बोफोर्स जैसे घोटाले हुए हैं तो उसके सबूत मिलने चाहिए ना।
द्विवेदी जी इस सवाल पर हम आते हैं, एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर लें पहले। जी कौन श्रोता जुड़ गए हमसे?
हेलो
जी, कौन कौन बोल रहे हैं?
हेलो मैं अनिल डोबरियाल, झारखंड ब्लॉक के बुरांसी गांव, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
डोबरियाल साहब हम आपको पहचान गए, आप हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, कहें अपनी बात।
हाँ जी भाई साहब, आपको सब सब प्रणाम, भाई साहब दोबारा भी, और सभी लोगों को प्रणाम, राजेश जोशी जी को विशेष प्रणाम। और भाई साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
जी,
कि भाई साहब इंडिया बोर्ड प्रोग्राम में उत्तराखंड से जो पलायन हो रहा है, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू आप कराएंगे तो भाई साहब मेरे लिए बहुत अच्छी बात।
डोबरियाल साहब आपकी इस विचार पर, सुझाव पर हम आएंगे, करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आप आइए आज के मुद्दे पर। आपको क्या लगता है रफाल सौदे में जो कुछ हो रहा है वो राजनीति है या वाकई कहीं कुछ, क्या सोचते हैं आप?
भाई साहब इसमें राजनीति तो है ही, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें जो भी डील हुई अंबानी साहब के साथ, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, देश को ये बता देना चाहे कि इसमें क्लियर क्या है। जो फ्रांस के राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं कि इनको जबरदस्ती से ये काम करवाया गया, तो ये देश को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहे कि वास्तव में इसमें क्या हुआ, क्या सच है क्या नहीं है। और जहां तक श्री राहुल गांधी जी के विषय में है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, जो कि आजकल ये सारी बातें मीडिया में, अखबारों में सारी बातें जो है छाई जा रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि देश को बताएं और सफाई दें कि वास्तव में इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि इसका बुरा असर जो है आने वाले लोकसभा 2019 में अवश्य पड़ेंगे। हम भी पार्टी के लिए ऐसे में कैसे काम कर पाएंगे?
डोबरियाल साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह आगे भी फ़ोन करते रहिएगा। राहुल बेदी जी आपके पास आ रहे हैं, आपने सुना और ये पिछले एक पखवाड़े से 15 दिन से रफाल सौदे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ज़ुबानी जंग जम के हो रही है। उस ज़ुबानी जंग में हम नहीं पड़ेंगे, तथ्यों पर बात करेंगे। क्या रफाल सौदे की तुलना बोफोर्स सौदे से की जा सकती है, करनी चाहिए?
ये बड़ा मुश्किल है कहना, मगर ये पॉलिटिक्स में जो परसेप्शन होती है, जो ख्याल होता है, जो वहम होता है, आप जो जैसे मर्जी परसेप्शन को ट्रांसलेट कर लीजिए, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और ये परसेप्शन हिंदुस्तान में है कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, कांग्रेस पार्टी के हों या बीजेपी के हों, अगर वो असले का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेपन्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें ज़रूर कोई हेराफेरी या कोई गोलमाल होती है। और दूसरी बात यह है कि इस जो रफेल का कॉन्ट्रैक्ट था उसमें दो लोग थे जिन्होंने डील साइन, जिन्होंने डील अग्री की, एक थे मोदी साहब एक थे ओलान साहब, उनके ऑफिशियल्स अलग। और अगर मोदी साहब ने प्रेशर डाला ओलान साहब पर अंबानी साहब को ये ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट देने का, तो ये बात बाहर नहीं आती जब तक मोदी साहब या ओलान साहब नहीं बोलते। तो इस बार ओलान साहब ने ये कबूल किया है और ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, डिफेंस मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, वो सीधा सीधा आके कहें कि ओलान साहब गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और उनका कोई मोटिव है। आज तक किसी ने नहीं कहा, निर्मला सीतारमन ने बहुत टेलीविजन पे इंटरव्यूज दी हैं, अखबारों में इंटरव्यूज दी हैं, मगर वो गोल 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 बात करती हैं मगर इसकी डायरेक्ट बात नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो डायरेक्टली आके कहें कि जी ये ओलान साहब गलत कहते हैं।
राहुल साहब ये बताइए कि भारत, यदि मेरी जानकारी और मैंने तथ्य सही जुटाए हैं, फैक्ट्स मेरे करेक्ट हैं, तो बताएं कि भारत फ्रांस से 126 रफाल विमान खरीद रहा था, फिर अचानक विमानों की संख्या घटकर 36 हो गई, ये कैसे, क्या डिमांड सप्लाई कितनी ज़रूरत थी, ये इतने विमानों की संख्या कम कैसे हो गई अचानक?
देखिए ये बड़ी लंबी कहानी है, ये जो 126 हवाई जहाज की कहानी है ये 2000-2001 से चलती आ रही है और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट टेंडर था वो 2007 अगस्त में इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने निकाला और 2010 और 11 में इसकी ट्रायल्स हुई और जनवरी 2012 में रफेल को सिलेक्ट कर लिया। उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 18 जो हवाई जहाज थे वो फ्लाई अवे कंडीशन में आने थे फ्रांस से और 108 जो थे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में ने बनाने थे, मगर रफाल दासों जो रफाल का मैन्युफैक्चरर है, दासों की और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बातचीत नहीं हो पाई वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, क्योंकि हैल के मुताबिक वो लगभग 2.75 गुना मैन आवर्स एक जहाज पर 275 घंटे लगाने थे और जो दासो है वो फ्रांस में उसी काम के लिए 100 घंटे लगाता था। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहती थी कि प्राइस भी कम हो और डिलीवरी भी जल्दी हो और दासो ने इसका इनकार कर दिया और वो तालमेल नहीं हुआ। तो 126 की बजाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अप्रैल 2015 में फ्रांस गए, पेरिस गए, तो उन्होंने ये 36 का अनाउंस कर दिया। इसका किसी को इलम नहीं है उन्होंने किस बेसिस पे किया, किससे कंसल्ट किया, क्योंकि ये अब जाहिर होता है कि इन्होंने परमिशंस जो थी ये ली नहीं।
कांग्रेस का ये भी कहना है कि रक्षा मंत्री को भी इसके बारे में पता नहीं था, विदेश मंत्री को भी पता नहीं था।
बिल्कुल ठीक है, जो पारिकर साहब थे तब डिफेंस मिनिस्टर, उनको भी ये मालूम नहीं था।
राहुल जी, कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो एक विमान है, एक रफाल विमान है, उसकी कीमत पहले 526 या 580 करोड़ रुपए थी, बाद में वो 1500 या 1600 करोड़ रुपए हो गई, तो क्या भारत कहीं ऐसा तो नहीं कि रफाल विमान की कीमत जो है वो ज़्यादा चुका रहा है? ये सवाल कई जगह पर पूछा जाता है।
ये मैंने पहले भी आपको अर्ज किया कि इसका कोई फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसकी फाइनल डील नहीं की और फाइनल दस्तखत नहीं किए कि ये इतने का होगा या इतने का नहीं होगा। ये जो हवाई जहाज है उसकी प्राइस 585 करोड़ है और उसकी जो वेपन्स हैं उसके अलग हैं, उसके एवियोनिक्स हैं जो अलग हैं, इंडिया स्पेसिफिक उस पर जो इक्विपमेंट लगाया गया है वो अलग है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस पार्टी कितने में फाइनली उस जहाज को लेती। ये तो एक परसेप्शन बन गया है कि ये 575 करोड़ से कांग्रेस पार्टी ले रही थी और मोदी सरकार ने 3 गुना ज्यादा पैसे दे के ली, पर ये परसेप्शन में मेरे ख्याल में इसमें कुछ तुक नहीं है।
अगले श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करने से पहले बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने से एक पाठक की, श्रोता की टिप्पणी हम शामिल करते चले कार्यक्रम में। श्रीकांत पराडकर लिखते हैं कि तकनीकी जानकारी भले ही शेयर ना करे सरकार, लेकिन पूरा सौदा कितने में हुआ ये बताने में क्या दिक्कत है। आएंगे हम इस पर। अगले श्रोता को हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। पहले इस समय कौन श्रोता जुड़ गए हमसे?
सर मैं रामेश्वर सिंह चौहान।
जी चौहान साहब कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं एमपी देवास से बोल रहा हूँ, बीबीसी में हमेशा सुनता हूँ, लेकिन मैं ब्लाइंड कैंडिडेट होने के कारण ना पत्र व्यवहार कर पाता हूँ ना कुछ कर पाता हूँ।
लेकिन आप फोन लगाते रहिएगा, पत्र भी लिखिएगा, अब कहें अपनी बात।
हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी देश के लिए हो रहा है अच्छा हो रहा है, और ये तो सब राजनीति है, सब एक दूसरे की टांग खींचने में काम करते हैं, और मैं देश के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, चाहे हेलीकॉप्टर या जहाज खरीदने के बारे में, हवाई जहाज के लिए, और देश के विकास के लिए जो भी हमारे देश के चिंतक हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ मेरी ओर से।
बहुत शुक्रिया। अगले श्रोता के पास चलेंगे। जी कौन श्रोता जुड़ गए हमसे इस समय? हेलो, लगता है संपर्क टूट गया है। इस बीच मैं एक टिप्पणी लेता चलूं। बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने से उमेश हांडा लिखते हैं कि जो विपक्ष है वो झूठे आरोप लगाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ कर रहा है। सैयद बारी लिखते हैं कि रफाल घोटाला जितना दिख रहा है उससे कहीं बड़ा घोटाला है। दिशा शर्मा लिखती हैं कि मोदी सरकार को बैकफुट पर नहीं जाना चाहिए, जो गलती या चूक हुई है उसे दुरुस्त करना चाहिए। एक बार फिर चलेंगे राहुल बेदी के पास। राहुल जी, रफाल सौदे में मोदी सरकार से आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी भूल हुई, कौन सी चूक हुई जिसकी वजह से ये विवाद इतना बड़ा हो गया और एक तरह से कहें कि सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया?
पहली बात तो इन्होंने इसकी जो प्राइस थी वो डिक्लेयर नहीं की, हालांकि थोड़ी बहुत इधर भामरे साहब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डिफेंस के, उन्होंने पार्लियामेंट में एक दो स्टेटमेंट दी, मगर उसकी जो कीमत है उसका हर टैक्स पेयर को हक है पता लगाने में कि इसका कितना हुआ। और दूसरी मैं सोचता हूँ जो उनको बहुत चोट लगी जिस चीज़ से, वो ओलान साहब की स्टेटमेंट से लगी कि अंबानी साहब को ज़बरदस्ती ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट मोदी साहब के कहने पे दिया गया। तो ये जो दो चीज़ें हैं, आप जो मर्जी सोचिए, ओलान साहब अच्छे थे बुरे थे, मगर वो फिर भी फ्रांस के 6 साल के लिए वो प्रेसिडेंट थे, तो और वो पार्टी थे इस कॉन्ट्रैक्ट में, दो ही तो पार्टी थी, एक मोदी साहब थे एक ओलान साहब थे, तो उन्होंने अगर बोल दिया है तो हमारी सरकार क्यों नहीं डिनाई करती? अगर वो बात गलत है तो वो डिनाई करे कि ओलान साहब को हमने नहीं कहा, वो क्यों नहीं करती?
अच्छा राहुल बेदी साहब, रफाल सौदे को एक तरफ रख दीजिए और बाकी तमाम रक्षा सौदों की बात करें जो आज़ादी के बाद भारत में हुए हैं। आपने काफ़ी कुछ पढ़ा लिखा है, बहुत जानते हैं आप रक्षा सौदों के बारे में। आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो डील्स होती हैं, समझौते होते हैं, रक्षा सौदे होते हैं, खरीद फरोख्त होती है, इसमें रिश्वत ये सब चीज़ें, दलाली, ये होती है या नहीं होती है?
ज़रूर होती हैं जी, बहुत होती हैं, और मगर ये चुपचाप होती हैं, और अगर ओलान साहब नहीं बोलते तो ये भी बात निकल जानी थी कि अंबानी साहब को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये हमें मालूम नहीं कि उन्होंने एक्चुअली उनके कहने पे दिया है या नहीं दिया है, मगर ओलान साहब के जो बयान है वो हमें लेना पड़ेगा कि सच है। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप देखिए, पहले तो बफर्स तो बहुत बहुत उम्दा कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें राजीव गांधी की सरकार भी गिरी, मगर वो लगभग 35 साल चला, मगर आज तक भी हमें मालूम नहीं हुआ कि कितने किसने पैसा खाया, कितना खाया और कैसे खाया, और वो अमाउंट जो थी उस टाइम पे वो 64 करोड़ थी।
बताइए, यहाँ पर एक विमान की कीमत ही जो है वो 1600 करोड़ बताई जा रही है
जी। उसका जो स्कैंडल था कि लेन देन जो हुई थी, अलेजेडली लेन देन हुई थी बोफोर्स में, उसका 64 करोड़ था उन दिनों में जब डॉलर की वैल्यू कोई 32-30-32 रुपए थी।
अच्छा राहुल जी, एक सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, सवाल पे दोबारा आपके पास आएंगे। वो सवाल ये है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि ये परसेप्शन की लड़ाई है, ये परसेप्शन की लड़ाई क्या मतलब कहना चाह रही हैं, हम इस सवाल पर आपके पास आएंगे। उससे पहले कुछ श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं।
हेलो
जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
हेलो, भारतेंदु बोल रहा हूँ सर, विलेज क्षेत्री बिहार से सर।
भारतेंदु जी, आपका टेलीफोन पहली बार लगा है।
जी जी, मैं बहुत बचपन से सुना करता था बीबीसी, और साहब देश के लिए आपने जो यह सवाल उठाया है यह एकदम से अहम सवाल है कि ये लोग, हमारे नेता लोग, देश का पैसा मैंने रक्षा सौदा या किसी भी अन्य बजट से लेकर के और उसको दलाली में बर्बाद कर देते हैं साहब, जिसका उदाहरण है आपका बफोर्स, और अभी अभी जो इन्होंने कहा था हमारे, हेलो
जी जी,
अभी अभी इन्होंने आपके जो इन्होंने कहा कि जरूर से जाता है, एकदम से साहब जाता है और ये लोग इसको व्हाइट कॉलर बना लेते हैं। नहीं तो ये बफोर्स में ही राजीव गांधी ने क्यों नहीं कहा कि हम मैंने लिए हैं सब, जबकि उन्होंने शपथ पूर्वक कहा था कि नहीं लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी को इस पर बोलना ही चाहिए, वो हम लोग की आशा होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, निर्मला सीतारमन वगैरह जो रटा रटाया जवाब देती है रट्टू टोता की तरह, ये नहीं होना चाहिए। देश को स्पष्ट बताया जाना चाहिए कि हमने लिया है कि नहीं लिया है, लेना उचित है कि नहीं है, तो जनता न्याय कर देगी साहब, समझे कि नहीं।
भारतेंदु जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इसी तरह फोन करते रहिएगा, चिट्ठी भी लिखिएगा। मैं पुराने सवाल पे लौट रहा हूँ राहुल बेदी के पास। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन कहती हैं कि ये परसेप्शन की लड़ाई है, ये कौन से परसेप्शन की लड़ाई है, क्या कहना चाहती हैं वो बताएं आप।
परसेप्शन की लड़ाई तो बिल्कुल है, इसमें फैक्ट कम है, परसेप्शन ज्यादा है। परसेप्शन ये है कि इसमें कुछ ना कुछ गलती हुई है, इसमें कुछ ना कुछ करप्शन है ये रफेल के कॉन्ट्रैक्ट में। और अगर ये परसेप्शन बैटल नहीं होता तो बीजेपी इतना अपने को डिफेंसिव नहीं बनती। और बीजेपी पिछले 2-3 हफ्ते से, जब से ये रफेल का मामला गर्म हुआ है, बहुत ही डिफेंसिव है। और वो बाहर आके ठीक तरह क्यों नहीं कहते, जैसे कि आप, आपके श्रोताओं ने कहा कि मोदी साहब को कहना पड़ेगा या किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी को या मिनिस्टर को कहना पड़ेगा कि ओलान साहब ने जो कहा है वो गलत है, ये क्यों नहीं कहते। ओलान साहब को कहे कोई 10 दिन हो गए हैं, आज तक किसी ने नहीं कहा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये, और मेरा ख्याल ये जो ज़रूरी तो है मगर ये लेट भी हो गया है अब, क्योंकि अगर कहें भी तो वो बात नहीं होगी। अगर वो पहले 1-2 दिन के बाद ये स्टेटमेंट दे देते कि ओलान साहब ने गलत कहा है, ऐसी चीज़ नहीं है, अंबानी साहब को ये रूल के पीछे, ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के पीछे ये छुप रहे हैं और कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मगर ये आउटराइट क्यों नहीं कहते कि ये गलत है।
राहुल बेदी, हम एक और सवाल लेकर आपके पास आएंगे, बस एक आखिरी श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। कौन श्रोता जुड़ गए हमसे इस समय?
जी हेलो
जी, कौन बोल रहे हैं?
जी मैं प्रसून त्रिवेदी, चंद्रावाद डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी यूपी से बोल रहा हूँ।
जी प्रसून जी, बहुत स्वागत है, रखें अपनी बात।
जी मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने विपक्ष की भूमिका अच्छी निभाई है, लेकिन भी लगाए हैं, लेकिन इनको पहले अपने जो घोटाला किया था उन्होंने उसका भी इनको उजागर करना चाहिए था, अगर ये इतना चिंतित हैं। और दूसरी बात ये है कि बार बार आरोप लगा के तो मिनिस्ट्री ने भी, जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो भी ये जितने का सौदा था इसकी कैग ऑडिट करेगी और सारे चीजें आपके सामने आएंगी। और जैसा कि रक्षा विशेषज्ञ महोदय जो है ओलांदा जी का जिक्र कर रहे हैं, ओलांदा जी दूसरे ही अपनी बात से मुकर गए, तो उन्होंने कहा ये डेसाल्ट बताएगी कि ये रक्षा, मतलब जो रिलायंस को शामिल किया गया था वो किसके कहने पर शामिल किया गया था।
द्विवेदी जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं वापस लौट रहा हूँ अपने विशेषज्ञ के पास राहुल बेदी के पास। राहुल जी आपके लिए आखिरी सवाल ये है, रफाल विमान सौदा भारत के लिए कितना ज़रूरी है और क्या इसका कोई दूसरा सस्ता विकल्प नहीं हो सकता था?
नहीं, ये बस सस्ता विकल्प तो हो सकता था, मगर जो रफाल हवाई जहाज़ है प्लेटफॉर्म के तौर से ये बहुत सुपीरियर प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया फाइटर है, मगर 36 जो हवाई जहाज़ हैं वो बहुत कम हैं, क्योंकि एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन है 42 होनी चाहिए, लगभग 32 या 33 आज हैं, और अगले 3-4 साल में ये इनका जो नंबर है ये लगभग 24 या 25 हो जाएगा, तो वो एयरफोर्स के लिए बहुत मुश्किल होगी। मगर ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मगर 36 कम है।
आंकड़े और इतिहास ये बताता है कि भारत में शायद ही कोई बड़ा रक्षा सौदा हुआ है जिसमें घोटाले, दलाली और रिश्वतखोरी के आरोप ना लगे हों, लेकिन अधिकतर मामलों में आरोप साबित नहीं होते, सवालों के जवाब नहीं मिलते। क्या रफाल मामले में भी ऐसा होगा या रक्षा मंत्री जिसे परसेप्शन की लड़ाई बता रही हैं उसमें कुछ और तथ्य और तर्क आने वाले दिनों में सामने आएंगे, ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। फिलहाल कार्यक्रम का समापन करेंगे। राहुल बेदी, आपने कार्यक्रम को सार्थक बनाने में मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले शनिवार फिर एक विषय के साथ हाजिर होंगे इंडिया बोल में। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी, फिलहाल संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि।